नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम कैंट स्कंद 5 अध्याय 20 श्लोक संख्या 18 तथा घृतो दाद्वहि कौंचद्वीपो द्विगुणास्वमानेन क्षिरोदेन परित उपकिप्तो वृतो यथा कुशद्वीपो घृतो देन यस्मिन् कौंचो नाम पर्वतराजो द्वीपनाम निवर्तक आस्ते तथा और उसी प्रकार घृत उदात घृत सागर से बही ही बाहर परे कौंच द्वीप नामक अन्य द्वीप द्विगुण दुगुना बड़ा स्वमानेन समान विस्तार का क्षीर उदेन दुग्ध सागर से परितः चारों ओर उपक्लिप्त घेरा हुआ वृतः घेरा यथा सदृश कुशद्वीप घृत उदयन घृत सागर से यस्मिन जिसमें क्रौंच नामक पर्वतराजः पर्वतों का राजा दीप का नाम निर्वर्तक लिया जाता है आस्ते विद्यमान है घृत सागर के बाहर क्रौंच द्वीप नाम का एक अन्य द्वीप है जिसकी चौड़ाई घृत सागर से दुगुनी अर्थात 16 लाख योजन मतलब 128 लाख मील है जिस प्रकार कुश द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है उसी प्रकार क्रौंच द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले दुग्ध सागर क्षीर सागर से घिरा हुआ है क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक एक विशाल पर्वत है जिसका कारण इस द्वीप का यह नाम पड़ा तो यह वर्णन है क्रौंच द्वीप का उसके पहले कुश द्वीप का वर्णन हो चुका है तो उसका रेफरेंस यह श्लोक में दिया गया है और उसकी चौड़ाई कितनी है 16 लाख योजन मतलब कि 128 लाख मील हमारे पृथ्वी में एक जगह से अगर आपको अमेरिका से जाना है दूसरी एंड तक तो कितने मील होते हैं 10,000 के करीब मील होते हैं और यहाँ 10,000 की बात नहीं हो रही यहाँ लाखों की बात 128 लाख की बात हो रही है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब 19वें श्लोक 19, 20, 21, 22 और 23 तक हम जाएंगे, इसका वर्णन है आगे। श्लोक संख्या 19, यो सौ गृह प्रहरणों मथित नितंब कुंजोपि क्षीरो देना सिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभयो बभूव। यद्यपि कार्तिकेय के शस्त्र प्रहार से क्रौंच पर्वत के ढालों की वनस्पतियां विनष्ट हो गई थी, किंतु चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा संचित होने एवं वरुण देव के द्वारा संरक्षित होने से ये पर्वत पुनः निर्भीक हो गया है। तो ये जो क्रौंच पर्वत है उसमें काफी नुकसान हुआ था। किसने शस्त्र प्रहार किया था? कार्तिकेय ने। तो लेकिन क्योंकि उसको क्षीर सागर का संरक्षण है तो वापस वो अपनी पुनः स्थिति में आ गया, संरक्षित हो गया पर्वत और निर्भीक भी हो गया। आगे श्लोक संख्या 20, यस्मिन्नपि प्रियव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपति स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्र नामसु सप्त रिक्षा दान वर्ष पानिवेश्य स्वयं भगवान भगवतः परम कल्याण यशस आत्मभूतस्य हरण हरेश्चर चरणारविंदम उपजगाम। मतलब इस द्वीप के अधिपति महाराज प्रियव्रत के अन्य पुत्र थे जिनका नाम घृतपृष्ठ था और जो अत्यंत विद्वान थे। उन्होंने भी अपने देश को 7 भागों में विभाजित करके उनके नाम अपने 7 पुत्रों के नामों के अनुसार रखे और स्वयं गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर परम कल्याणकारी समस्त आत्माओं की आत्मा श्री भगवान के पदारविंदों में शरण ले ली। इस प्रकार से वे सिद्धि को प्राप्त हुए। तो ये महाराज प्रियव्रत के पुत्रों की बात हो रही है ब्रह्मांड की रचना में। और इनमें जो घृतपृष्ठ है उनकी बात ये श्लोक में की गई है कि उन्होंने कैसे गृहस्थ जीवन किया और उसके बाद में विरक्ति लेकर के भगवान के पदारविंद में संपूर्ण शरणागत हो गए और सिद्धि को भी प्राप्त कर दिए। तो अभी आगे का 21वां श्लोक, आमो मधुरुहो मेघ पृष्ठ सुधामा ब्रजिष्ठो लोहिताणो वनस्पतिरिति घृत पृष्ठ सुतास्तेषां वर्ष गिरय सप्त सप्तैव नाद्यश्चाभिख्याता शुक्लो वर्धमानो भोजन उपबर्हिणो नंदो नंदन सर्वतो भद्र इति अभया अमृतोघा आर्यका तीर्थवती रूपवती पवित्रवती शुक्लेति। महाराज घृत पृष्ठ के पुत्रों के नाम आम मधुरिह मेघ पृष्ठ सुदामा ब्रजिष्ठ लोहिताण तथा वनस्पति थे। उनके द्वीप में 7 पर्वत थे जो 7 देशों की सीमाओं को सूचित करने वाले थे और 7 नदियां भी पर्वतों के नाम है शुक्ल वर्धमान भोजन उपबर्हिण नंद नंदन तथा सर्वतो भद्र। नदियों के नाम है अभया अमृतघा आर्यका तीर्थवती रूपवती पवित्रवती तथा शुक्ला। तो ये सब पर्वत और नदियों का वर्णन है और घृत पृष्ठ के पुत्रों के नाम हैं। श्लोक संख्या 22। यासामंभ पवित्र ममल उपयुंजानाम पुरुष ऋषभद्र विण देवक संज्ञा वर्ष पुरुष आपो मयम देवमपाम पूर्णेना जलिना यजन्ते। कौच नाम द्वीप के निवासी चार वर्णों में विभाजित है। पुरुष ऋषभ द्रविण तथा देवक वे जल के स्वामी वरुण जिनका रूप जल के समान है। कि चरणारविंदों पर इन पवित्र नदियों की जलांजलि अर्पित करके श्री भगवान की पूजा करते हैं। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आपोमय अश्मयम क्रौंच द्वीप के विभिन्न वर्णों के लोग बद्ध अंजलि द्वारा पवित्र नदियों का जल प्रस्तर या लोहे के बने श्री विग्रह पर अर्पित करते हैं। तो जो जल अंजलि अर्पित कर रहे हैं वो भगवान की पूजा करने के लिए, वो कौन से भगवान की पूजा करते हैं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये नदियों का जल लेकर के लोहे का बना या तो पत्थर का बना श्री विग्रह मूर्ति है उसका पूजन करते हैं। श्लोक संख्या 23। आप पुरुष वीर्यास्त पुनन्ति भूर्भुवः स्वः तानः पुनीतामि वघ्नि स्पृशताम आत्मना भुव इति। क्रौंच द्वीप के निवासी इस मंत्र से उपासना करते हैं। हे नदियों के जल, आपको श्री भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः आप भूलोक भूवरलोक तथा स्वरलोक को पवित्र करते हैं। अपने स्वाभाविक पद के कारण आप पापों को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम आपका स्पर्श करते हैं, आप हमें भी पवित्र करते रहे। तात्पर्य भगवत गीता 7:4 में श्री कृष्ण का कथन है भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति है। जिस प्रकार ऊष्मा तथा प्रकाश नामक सूर्य की शक्तियां इस ब्रह्मांड में क्रियाशील है और प्रत्येक वस्तु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में क्रियाशील रहती है। शास्त्रों में वर्णित विशिष्ट नदियां भी श्री भगवान की शक्तियां हैं और जो व्यक्ति इनमें प्रतिदिन स्नान करते हैं वे पवित्र होते रहते हैं। सचमुच अनेक लोग गंगा में स्नान करने मात्र से रोग मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार क्रौंच द्वीप के निवासी नदियों में स्नान करके पवित्र होते हैं। तो यहाँ पर जो द्वीपों का वर्णन है उसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो नदियाँ आती है वो पवित्र नदियाँ, उसमें स्नान करने से क्या लाभ मिलता है। तो अब हम इसके बारे में वर्णन करेंगे। आप भी सोचिएगा और अगर आपको कुछ कहना है पूछना है तो बाद में आप कह सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ते। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक के अंदर बताया गया है कि भगवान की शक्ति किस प्रकार से की गई है। यहाँ पर जो वर्णन है वो कौन से द्वीप का वर्णन है, क्रौंच द्वीप का वर्णन हो रहा है। और यहाँ पर प्रार्थना की गई है, हे नदियों के जल आपको श्री भगवान से शक्ति प्राप्त है, इसलिए आप भू भुवा तथा स्वर लोक को भी पवित्र कर देते हैं। अपने स्वाभाविक पद के कारण आप पापों को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम आपका स्पर्श करते हैं, हम आप हमें भी पवित्र कर दीजिए। तो ये नदी में स्नान करने का क्या प्रयोजन है, जो पवित्र नदियां हैं हमारे भारतवर्ष में, कितनी पवित्र नदियां हैं, 7 है, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम कुरु। 7 नदियां हैं, पवित्र है, अति पवित्र है, इनमें स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार हम यहाँ पर करते हैं, हमारे पास वृंदावन में यहाँ कौन सी नदी है, जमुना मैया की। तो जमुना मैया जो है खास करके बहुत ही पवित्र मानी जाती है, क्योंकि कृष्ण भगवान के पवित्र चरण कमल का स्पर्श हमेशा होता रहता है जमुना जी में। तो इसके कारण सबसे ज़्यादा लाभ हमें मिलता है, जो वृंदावन के भक्त हैं उनको जमुना जी में स्नान करने से सबसे ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे ही यहाँ पर करौंच द्वीप के निवासी उपासना करते हैं और स्नान करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब पूरे विश्व के यूनिवर्स के डिटेल में बताई गई है। पूरा जो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है, उसकी रचना कैसे कौन कर रहा है, ये सब यहाँ पर बात डिस्कस हो रही है। तो इसमें सबसे पहले जम्बूद्वीप की बात हुई है। तो जम्बूद्वीप के अंदर अंतर्गत ही हमारा भारतवर्ष आता है, और जम्बूद्वीप है उसके आगे उससे बड़ा कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद आता है कुशद्वीप, और कुशद्वीप के बाद अब बात हो रही है क्रौंचद्वीप, जो उससे भी बड़ा है। तो इसमें क्रौंचद्वीप में कौन सा सागर से वो घिरा हुआ है, क्षीर सागर से घिरा हुआ है, और उसकी जो साइज बताई गई है 128 लाख मील की साइज है। जितना बड़ा द्वीप है उतना ही बड़ा सागर है। तो ये सब बातें सुनकर या पढ़कर कोई कहेगा कि भाई हम कैसे उसको मान सकते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने तो बहुत डेवलप किया हुआ है और अपने दूरबीन से वो देख सकते हैं, तो क्या वो क्रौंच द्वीप को, लक्षद्वीप को, पक्षद्वीप को और कुशद्वीप को क्या देख पाएंगे? दूरबीन से ये चीज़ें नहीं दिख सकती है। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट होगा और उसका कितना ही बड़ा दूरबीन क्यों न हो, ये जो वर्णन है वो उनको पता नहीं लगेगा। इसलिए वो लोग ये बात मानने को राजी नहीं हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारी जो भागवत और रामायण वगैरह है वो तो एक कल्पना है, ऐसी कोई चीज़ हमने हमारे दूरबीन में देखी नहीं है। तो ये सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, क्या वो कल्पना कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी के पास दिव्य दृष्टि है, उन्होंने बताया है भागवत में कि मेरी दृष्टि से मुझे जो दिख रहा है उसी का मैं वर्णन कर रहा हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड है, उसको पूरा पूरा देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं मुझे जितना दिखता है उतना मैं वर्णन कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने पहले ही बता दिया है। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो हिमालय के अंदर बैठ करके ध्यान करके और अपने पिताजी से ज्ञान पा करके और भागवत कथा सुन करके आए थे दिल्ली में, और दिल्ली में परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुना रहे हैं। तब अनेक लोक में से नारद मुनि, शिव जी, ब्रह्मा जी और बहुत बड़े बड़े ऋषिगण आए हुए थे भागवत कथा सुनने के लिए। इतने महान व्यक्ति, सब महात्मा आए हुए थे सुनने के लिए, तो क्या उनको कोई स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट था या उनको सच्चाई जानने में इंटरेस्ट था? तो इससे पता चलता है कि शिव जी अगर शिवलोक से आते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आते हैं, नारद मुनि आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग ये भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं, तो ये एक कोई काल्पनिक वर्णन या माइथोलॉजी नहीं हो सकती है। ये जो सही में जैसा ब्रह्मांड है उसका वर्णन हो रहा है, और उसको देखने के लिए जैसे सुखदेव गोस्वामी के पास दिव्य दृष्टि है, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे अपना यूनिवर्सल फॉर्म विश्वरूप दर्शन कराने के लिए, और जैसे संजय को, वो दिल्ली में बैठा था धृतराष्ट्र के पास, तो उनके गुरु व्यास, महामुनि व्यास देव ने संजय को भी दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वो कुरुक्षेत्र की, महाभारत की वॉर, वो लड़ाई देख सकता था अपने महल में बैठ करके, देख करके वर्णन करता था महाभारत कैसे, कहाँ पर कौन सी लड़ाई हो रही है, सब उसको दिखता था। तो ये जो होता है वो दिव्य दृष्टि या दिव्य चक्षु से होता है, और जो साइंटिस्ट लोग हैं उनके पास कौन से चक्षु है? चर्म चक्षु है। और तो चर्म चक्षु से और उससे उससे बनाया गया जो दूरबीन है उससे वो लोग ये ब्रह्मांड का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको अपना दूरबीन जो है वो साइड में रख करके किसी अच्छे भगवान के पवित्र भक्त के पास जाकर के जो सुखदेव जी ने कहा है वो बात को सुननी चाहिए। भगवान जी कहते हैं 9th chapter में भगवद गीता में 3rd श्लोक में, और श्रद्धा ना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। जिन लोगों को दूरबीन पे ज्यादा श्रद्धा है और भगवान पे श्रद्धा नहीं है, भागवत में भगवद गीता पे श्रद्धा नहीं है और उसको काल्पनिक कथा मान लेते हैं, उनको अश्रद्धालु बोला है भगवान ने। कि ये अश्रद्धालु लोग अनेक बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुखी होते हैं और दुख में उनका जीवन कटता है, जन्मों जन्म वो अनेक दुख पाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हमें इतना दुख हो रहा है। मृत्यु संसार वर्तमानी, ये जो संसार है मृत्यु स्वरूप है, इसी में घूमते रहते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। जो अगर किसी को सदगुरु के आश्रय का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है तो वो कैसे प्राप्त होता है? कृष्ण भगवान की कृपा से सदगुरु की प्राप्ति होती है, और सदगुरु की कृपा से कृष्ण भगवान के चरण की प्राप्ति होती है। जब तक ये दोनों का संगम नहीं होता है जीव के साथ, दोनों की कृपा नहीं होती है, तब तक वो जीव भटकता रहता है, तरह तरह के कल्पनाएं करता है और दूरबीन बनाता है, रॉकेट बनाता है, काफ़ी चीज़ें बनाता है, और उससे वो समझता है कि मैं सारे संसार का सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। ये पृथ्वी जो है हमारी, वो सूर्य मंडल में एक ग्रह है, ऐसे अनेक ग्रह मंडल हैं, और इसमें सूर्य जो है, सूर्य देव जहाँ पर निवास करते हैं विवस्वान उनके राजा, वो सूर्य ग्रह पृथ्वी से बहुत बड़ा ग्रह है। और अगर एक छोटा सा बिंदु आप समझ लीजिए, यह रूम के अंदर एक बिंदु कहीं पर पड़ा हुआ है तो जल्दी किसी को दिखेगा नहीं, ऐसे ही हमारी पृथ्वी सूर्य के आगे है एक बिंदु समान, इतना बड़ा सूरज है। और अगर वो सूरज के नज़दीक में कोई दूरबीन ले जाएगा तो क्या होगा? जल जाएगा, पहले तो वो ही खुद ही उसका वही नष्ट हो जाएगा। सूरज की गर्मी, इतनी प्रचंड गर्मी मात्रा में प्रकाश और गर्मी अंदर से, हजारों लाखों हाइड्रोजन बम अगर आप एक साथ जला दो तो उससे भी जितनी गर्मी और प्रकाश होता है उससे भी ज़्यादा सूरज के हर सेकंड में इतनी वो पैदा करता है शक्ति। तो इतनी सारी मात्रा में जो शक्ति है सूरज के पास, वहाँ पर कोई साइंटिस्ट का कोई बात चलेगा नहीं। तो ये सूरज है, ये तो एक सूरज है, ऐसे अनेक गैलेक्सीज है और इसमें अनेक स्टार है, वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, और गैलेक्सीज के पार मिल्की वे है, उसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका साइंटिस्ट लोगों को भी पता नहीं है। लेकिन भागवत में सुखदेव गोस्वामी को पता है कि आगे क्या है, उसके आगे क्या है, उसके आगे कौन सा द्वीप है और वहाँ पर कौन सा सागर है। अब यहाँ पर घृत के सागर की बात हो रही है तो कोई बोलेगा इतना बड़ा घी का सागर, हमको तो वनस्पति घी भी नहीं मिल रहा है, और ये इतना घी कि पूरा सागर, हम वहाँ जा सकते हैं? और फिर आती है बात क्षीर सागर की, तो वो भी इनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि दूध अगर गाय का दूध चाहिए, कई लोग तो अब दूध पीना भी बंद कर रहे हैं। एक नया फैशन चला है कि अब दूध हम नहीं लेंगे, दूध के बिना वो जीते हैं। अमेरिका में मैं गया तो वहाँ काफ़ी लोग इस पे चल गए हैं कि दूध और दूध की कोई चीज़ हम नहीं लेंगे। तो अब आप सोचिए, गाय का दूध नहीं पिएंगे, कई लोग बोलते हैं हम बकरी का दूध पिएंगे, तो गई बोलते हैं हमको ऊँट का दूध पसंद है। आप अगर राजस्थान में थोड़े आगे निकल जाएंगे तो वहाँ ऊँट पालते हैं, क्योंकि उनका दूध बहुत बिकता है और महंगा भी बहुत होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि गाय का दूध इतना अच्छा, जो कि अमृत के समान है। कृष्ण भगवान ने खुद ने अपने उदाहरण से बताया है कि गौ सेवा करनी और गाय का दूध पीना ये श्रेष्ठ है। कहीं पर कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा कि भैंस का दूध पियो, बकरी का दूध पियो, ऊँट का दूध पियो। तो ये लोग कहाँ से ये सब चीज़ें ढूंढ के ले आते हैं। ये बताते हैं कि अपने को जो ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं वो हमेशा गलत रास्ते पे चढ़ जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो हमें यहाँ पर बता रहे हैं, उस बात को अगर हमें समझ में आ जाए, जितनी हमारी ताकत है, बुद्धिमता है, मन की मेमोरी पावर है, ब्रेन का मेमोरी पावर है, इतना हम अगर पढ़ के सुन करके अगर ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी भागवत कथा सक्सेस हो जाती है, सफल हो जाती है। और जो लोग सोचते हैं कि भाई हमने ना दूध देखा ना घी देखा और ये तो सागरों की बात, फिर आगे एक जो द्वीप है उसमें वाइन का सागर है, तो वहाँ पर वाइन और लिकर का पूरा सागर बना हुआ है। तो कोई अगर किसी को ड्रिंकिंग का हैबिट है तो वो सोचेगा कि अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो कितना मजा आएगा, पीते रहो पीते रहो, अंदर ही डूब जाएगा। तो ऐसे मतलब लोग अपनी सोच के मुताबिक, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये समझने के लिए है कि ये भगवान की शक्तियाँ अनंत है। कृष्ण भगवान जब वामन रूप लिए थे तब छोटे से बालक के रूप में बलि महाराज के आगे आए थे, और फिर उन्होंने त्रिविक्रम बन के ये पूरे ब्रह्मांड के जितने भी द्वीप है, जितने भी सागर है, उनको पार करके अपना जो पांव है वो ब्रह्मांड के उस पार लगा दिया था, और उसका छेदन करके भेद के वहाँ से गंगा जी को ले आए थे उनके चरण से। तो ये एक ताकत होती है। हम सोचते हैं कि छोटा सा कृष्ण कन्हैया है, यशोदा मैया का लाला है, तो इतना बड़ा कैसे हो गया, पूरे ब्रह्मांड को उसने भेद दिया। और जब भगवान जी ने महाविष्णु स्वरूप लिया था, महाविष्णु स्वरूप हमेशा के लिए लेते हैं, तो उसमें भी उनके शरीर में से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, उनके सांस बाहर उच्छ्वास से ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और जब अंदर सांस लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड सभी जीव उनके अंदर चले जाते हैं। तो इतना बड़ा उनका स्वरूप है। और वही भगवान गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो कृष्ण भगवान है उनकी लीलाएं अनंत है, उनकी शक्तियां अनंत है, उनके अवतार भी अनंत है, और फिर भी वो इतने दयालु हैं और इतने मित्र स्वभाव के हैं कि जो छोटा सा एक जीव मात्र है उसके साथ भी वो मित्रता करने के लिए तत्पर रहते हैं। ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्तष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। 15वें अध्याय में भगवान जी कहते हैं कि ये खोया हुआ जीव जो है मेरा अंश है, जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास, ये सनातन है, हमेशा का है लेकिन मुझे भूल चुका है और यहाँ से वहाँ, वहाँ से कहाँ, वो अनेक योनियों में भटक रहा है। ये भटकता हुआ जीव अपने को शरीर मान करके भूल भुलैया में पड़ा हुआ है, उसको वापस मेरे साथ गोलोक में ले जाने के लिए मैं आता हूँ। तो जो कई मूर्ख लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं सर्व लोक का महेश्वर हूँ, सर्व प्राणियों का, सभी मानवों का, देवताओं का, अहम आदि ही देवानाम ऋषिणाम च महर्षय, कि मैं सभी देवताओं का भी आदि हूँ, उनको बनाने वाला हूँ, सभी ऋषि भी मेरे में से आए हैं, महर्षि भी मेरे में से आए हैं, तो इसलिए देवता लोग मुझे नहीं जानते, ऋषिगण भी मुझे नहीं जानते और यहाँ के पृथ्वी लोक के लोगों की तो बात ही क्या करना, कलयुग के लोग तो जानने के उनकी कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर देवता लोग भी कृष्ण भगवान को नहीं पहचान सकते हैं तो यहाँ के लोग कैसे पहचानेंगे। तो भगवान जी कहते हैं अवजानन्ति, वो लोग मुझे नहीं जानते, मूढ़ा क्यों नहीं जानते, वो मूर्ख है, मूढ़ा है। मानुषिम तनुमाश, कि मुझे सामान्य आदमी जैसा सोचने लगते हैं कि ये तो, जैसे दुर्योधन सोचता था कि कृष्ण तो एक सामान्य द्वारिका में रहता हुआ कोई है, कोई इसका इतना बड़ा महत्व नहीं है, मेरे आगे कुछ भी नहीं है, कृष्ण क्या है मेरे आगे, दुर्योधन ऐसा सोचता था। तो इसलिए भगवान जी जब गए थे हस्तिनापुर संधि प्रस्ताव लेकर के, तब दुर्योधन ने जब इनवाइट किया तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे घर आकर के भोजन नहीं ले सकता हूँ क्योंकि तू बहुत ही मूर्ख प्राणी है, तुझे पता मैं कौन हूँ ये तो पता नहीं है और तू मुझे इनवाइट करने के लिए बोल रहा है, ऊपर से मेरे जो परम भक्त हैं पांडव उनको मारने के लिए हमेशा तू तत्पर रहता है, कई बार तूने प्रयत्न कर दिया है उनको मारने का लेकिन तेरा एक भी प्रयत्न सफल नहीं हो पाया है, क्यों सफल नहीं हुआ कभी सोचा, ये मैं उनका रक्षा कर रहा हूँ इसलिए तू कभी सफल नहीं होगा, तेरा ही इसमें विनाश हो जाएगा। तो भगवान जी ऐसा सोचते हैं और दुर्योधन अलग से तरीके से सोचता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो कृपा करके सभी जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, एक के बाद एक आते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद आए थे और उन्होंने सारी पृथ्वी में सब जगह कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन संस्था के द्वारा भगवान नाम और भगवद गीता भागवत का प्रचार कर दिया, मंदिर बना दिए, तो आज हरेक कंट्री में इस्कॉन के मंदिर हैं, अनेक हजारों भक्त ज्वाइन कर रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं और श्रद्धा से भगवान का नाम ग्रहण कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कैसे ये किया जाता है, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन गॉड रियलाइजेशन करना है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सद्गुरु को ढूंढना चाहिए, सद्गुरु की प्राप्ति करके उनके उनको प्रणाम करके, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनको पूछना चाहिए कि गुरु महाराज आपकी सेवा में कैसे कर सकता हूँ, आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, आप कुछ सेवा मुझे बताइए। तो ये भगवान जी खुद कहते हैं इतना ही नहीं, उन्होंने खुद करके दिखाया है। संदीपनी ऋषि थे, जब उनके गुरु थे तो उनकी सेवा उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से की थी और प्रसन्न होकर के संदीपनी ऋषि ने उनको आशीर्वाद भी दिया था। तो ये जब कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब भी उन्होंने अपने गुरु महाराज को बहुत प्रसन्न किया था और हरे कृष्ण महामंत्र भी पाया था वो गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज से ही पाया था। ईश्वरपुरी महाराज ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिया, उसका जाप शुरू करने से ही उनको कृष्ण भगवान के दर्शन होने लगे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है कि कैसे गुरु जी का शरण लिया जाता है और उससे ही गुरु जी के आज्ञा का पालन करने से ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हम पहुंच पाते हैं। तो ये जो एक रहस्य है जिसको कि बाहर के लोग कभी नहीं समझ पाते हैं और दूरबीन को लेकर के बैठे रहते हैं, तो ये रहस्य भक्तों को ही पता है। कृष्ण भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, के भक्ति योग के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये ब्रह्मांड कैसे बना है, अनेक ब्रह्मांड कैसे बने हैं, ये पूरा रहस्य जो है वो जब तक तुम सद्गुरु की प्राप्ति करके भक्त नहीं बनोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको श्रवण भक्ति कहते हैं कि जो यहाँ पर हमारे सबसे पहले गुरु सुखदेव गोस्वामी है और दूसरे गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, इनसे हम ये श्रवण करते हैं और इसको हृदय में उतारते हैं तो इससे रहस्य धीरे धीरे हमारी दिव्य दृष्टि है वो खुलने लगती है, हमारे दिव्य चक्षु हमें प्राप्त होते हैं। तो ये भागवत कथा जो है उसका प्रयोजन यही है कि हमारे श्रवण के द्वारा हम हमारी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते। जब तक हमें हमारी दिव्य दृष्टि न मिल जाए तब तक भगवान जी कृपा करके अपने मूर्ति स्वरूप से प्रकट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रभुपाद जी के इनविटेशन के कारण कृष्ण बलराम जी यहाँ पर आए हुए हैं गोलोक धाम से और यहाँ पर खड़े रहते हैं, भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोरनीता सब आए हुए हैं भगवान धाम से और यहाँ पर मूर्ति स्वरूप में खड़े रहते हैं। तो ये भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए श्रील प्रभुपाद की रिक्वेस्ट के कारण आए हुए हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो ये पूरा भागवत हमें समझ में आ जाता है। इतना ही नहीं, सब कुछ पूरा विश्व हमें उसका दर्शन भी करने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा। आपको किसी को कोई प्रश्न है, पूछना है तो, कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद्भागवतम की।